मुश्किल अल्फाज की वजाहत और उनके मादा, आप देखिए आयत नंबर 10 में लफ्ज आया है जागातिल अबसारु। जागा पढ़ी चुकी हैं, क्या है जा या गैन, जैग से है। हाँ, ला तुझे कुलूबना, और जैग का लफ्ज जो है ये टेढ़ के लिए आता है ना, जागा जो है वो टेढ़ा होना, और जागल बसर जैसे आंखें जो है वो सीधा देखने की बजाय फिर टेढ़ा देखने लगे, है ना, टेढ़ी हो जाए आंखें। और असल में ये मुहावरा है, और मुहावरा किस लिए इस्तेमाल हुआ है, जागत इलब सारू, कि जब आंखें जो हैं वो पथरा जाएं, और जब आंखें जैसे जो है पथरा जाती हैं तो इंसान की कैफियत क्या हो जाती है कि ऐसा महसूस होता है कि इंसान जो है वो टिकटिकी बांध कर कहीं देख रहा है, किसी और ही तरफ देख रहा है। तो ये जो लफ्ज है जैक का राहे हक से इनहराफ करने के लिए भी आता है, फामल्लदीन फी कुलूबिहिम ज़ैगुन फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन, तो फिर जिन लोगों के दिलों में कजी है वो उनमें से मुतशाबहात के पीछे लगे रहते हैं। ज़ैग गोया के मादी तौर पर भी और हिस्सी तौर पर भी ये ज़ैग का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि दिल का टेढ़ा हो जाना, है ना। और यहां पर जो है वो नजर के लिए आया है, क्योंकि आंखें तो नजर आती है ना, तो जागल बसर के मानी है नजर का थकना, निगाह ने गलती की, एक तरफ को हट गई। जैसे मसलन आप गाड़ी चला रहे हैं, आप सीधा देख रहे हैं, लेकिन लम्हे भर को क्या होता है कि जैसे नजर टेढ़ी हो गई, तो आप थोड़े से भी इधर हुआ तो आप क्या है कि गाड़ी किसी के साथ जो है वो लग जाती है। तो ये लफ्ज जो है मादी तौर पर भी और मानवी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जाविया निगाह, नुक्ताए नजर, उसमें तब्दीली, टेढ़, इनहराफ के लिए। ये मुहावरा है जागतिल अबसार, इसको आप याद कर लें, जागतिल अबसार। और दूसरा मुहावरा क्या है, वह बलागतिल कुलूबुल हनाजिरा। बलागा के मानी होते हैं पहुंचना, और कुलूब जो है ये कल्ब की जमा है। अब कुलूब पहुंच गए, क्योंकि बहुत से ग्रहों की बात हो रही है, तो दिल पहुंच गए। दिल कहाँ पहुंचे, अल हनाजिरा, तो हा नून जीम रा। तो ये लफ्ज जो है ये चार हर्फी है, और ये कहते हैं नरखरा। नरखरा क्या होता है, सांस की नाली, सांस की नाली के लिए आता है। और अब क्या है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो दिल थे वो सांस की नाली तक जो है वो पहुंच गए, गोया के कलेजे जो है वो मुंह को आ गए। और ये लफ्ज भी जो है ये क्या है, ये मुहावरा है। और ये लफ्ज या ये मुहावरा जो है ये कब इस्तेमाल किया जाता है, गम की इंतहाई कैफियत के लिए। क्योंकि आप देख लें कि हनाजिर जो है क्या इसके मानी है कि अब आप देखें कि एक है कि दिल, अब दिल जो है हनाजिर तक पहुंच गए, गले तक पहुंच गए, नरखरे तक, सांस की नाली तक। तो नरखरा किसे कहते हैं कि बेरूनी जानिब से हलकूम का जो सिरा है बाहर की तरफ से, ये इसके लिए ये जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जमा जैसे हंजरा, हंजरा तू जो है ये नरखरा को कहते हैं, और हनाजिर जो है वो इसकी जमा है। तो अब तुम्हारे जो दिल थे वो बिल्कुल ही सांस तक की नाली तक पहुंच गए, हनाजिर तक पहुंच गए। फिर अगला ये भी मुहावरा है, वा तजुन्नूना बिल्लाहि जुनूना, और उस वक्त जो थे तुम गुमान करने लगे अल्लाह के बारे में, गुमान करना। तो आप ये बात भी पहले पढ़ चुकी हैं कि जोए नून, नून के मानी क्या होते हैं, गुमान करना, और फिर इसके बाद जब बा आ जाए तो फिर मानी क्या होते हैं, हाँ जैसे एक यकीन के से मानी जो है वो पैदा होने लगते हैं। वतजुन्नूना बिल्लाहि जुनूना, कि तुम्हारा अल्लाह के बारे में गुमान जो था वो यकीन का गुमान था। गोया कि इंसान जो है वो बहुत ज्यादा, जैसे क्योंकि यहाँ पे जमा भी आया है ना, जुनूना, एक जन नहीं, तो तुम्हारा जो गुमान था वो तरह तरह का गुमान था, बहुत सा गुमान तुम अल्लाह के बारे में करने लगे। फिर आयत नंबर जो है, अगर आप देखें तो आयत नंबर है, आयत नंबर 14 में लफ्ज है तलब्बसू, लाम्बा सा, मानी क्या है इसके? इंतजार में, किसी के इंतजार में ठहरना। तो यहाँ पे क्या है, वमा तलब्बसू, और नहीं वो ठहरे है ना, उन्हें कोई तामल नहीं होता, वो किसी का इंतजार नहीं करते। फिर आयत नंबर 18 में आए तो अल मुअव्विकीना है, ऐन वौकाफ इसका रूट है, और मुअव्विकीन मुअव्विक की जमा है। यहाँ पे ये इस्म फाइल इस्तेमाल हुआ है, और ऐन वौकाफ जो है इसके मानी होते हैं कि लोगों को अच्छे कामों से रोकना, है ना, लोगों को अच्छे कामों से रोकना, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। रोकना, बाज रखना, हटाना, सबके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि किसी को रोका जाए या फिर उसको जो है वो हटाया जाए। तो अब आप देखें कि यहाँ पर ये इस्म फाइल इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी हो सकता था कि यहाँ पे अल्लाह ताला जो है कोई और लफ्ज इस्तेमाल करते ना, क्योंकि रोकने के लिए कुरान में मना भी आ सकता है, नहा भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अव्वा का आया और अल मुअव्विकीन रोकने वाले। तो फिर इसके मानी क्या है कि बेफैज इंसान, ऐसा इंसान जो लोगों को भलाई के कामों से रोकता है, आम रोकना नहीं है, भलाई के कामों से रोकना है। और फिर इधर अगर आप देखिए तो इसके बाद हमें लफ्ज मिलता है और वो क्या है, हलुमा, हलुमा, और हलुमा जो है हालामीम, इसके मानी होता है कि आना, लाना, और ये लफ्ज जो है पुकार पुकार कर बार बार कहने के लिए इस्तेमाल होता है, आना लाना और बार बार पुकार पुकार कर कहने के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज जो है ये बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आप देखें आने के लिए कुरान में 5 लफ्ज हैं, एक है जा, दूसरा है अता, तीसरा है हैता, हैता लख आप पढ़ चुकी है ना, फिर चौथा है हलुमा, पांचवा है ताल। और हलुमा और ताल जो है वो आप पढ़ेंगी यही 21वें पारे में ही, एक तो यहाँ पे आपने हलुमा पढ़ लिया और जो अगला चंद आयतें रहती हैं उसमें ताल ता का लफ्ज जो है आप पढ़ेंगी। तो हलुमा ये अस्माउल अफवाल से है, पुकार कर किसी को बुलाना, पुकार पुकार कर किसी को बुलाना, बार बार कहने के लिए आता है। और जो ताल है ऐन लाम वाव से है, और इसी सूरत के अंदर ये इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ये देखिए, सूरत अहजाब है और इसमें आयत 28 में फताह लेना, और इसके मानी क्या होते हैं, बुलंदी, बुलंदी और ताल, यानी किसी को बुलंद जगह या बुलंद मकसद की तरफ बुलाना, आम बुलाना नहीं है, किसी को ताजीम से बुलाने के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और हैता का चीख कर पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है ना, वगल्ला कतिल अबवाबा वकालत हैता लक, कब हुआ था ये, सूरत यूसुफ में ये था। खैर अच्छा हम आगे चलते हैं, और आगे हमें लफ्ज मिलता है अशिहतन, शीन हा, और इसके मानी है, ये लफ्ज जो है ये बुखल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शहीहुन की ये जमा है, शहीहुन की जमा है अशिहातन, हरीस लोग, किसी चीज पर जो है वो टूट पड़ने वाले लोग, तो आम लोग नहीं, बल्कि अब आप देखें कि कुरान मजीद में बुख़ल के लिए और लफ्ज भी तो इस्तेमाल हुए हैं ना, कोई और भी तो आ सकता था, तो यहां पर जो है अशिहातन लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर फिर इससे मुराद क्या है, क्योंकि बुख़ल करने के लिए 8 लफ्ज कुरान में आए हैं और इसका 7वां दर्जा है शहा। तो पहला दर्जा बखिला, दूसरा अमसका, तीसरा अवआ, चौथा अकदा, पांचवा अकना, छठा गन्ना और सातवां है शाह। तो शोह, शोह नफ्स आप पढ़ चुकी हैं, तो शोह जो है, मैंने आपको जब बनी इसराइल में बुखल के मानी बताए थे वहां भी शोह की तारीफ की थी। तो शोह क्या है? बुखल करना, हिर्स और लालच करना। शोह के अंदर जो है वो दो चीजें पाई जाती हैं, ये बात आपके याद रखने वाली है कि शोह जो है इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। दो चीजें क्या होती हैं? एक होता है बुखल और दूसरा है हिर्स। जब दोनों बातें जमा हो जाएं तो उसे शोह कहते हैं। अब जो है वो बुखल किस चीज में करना है कि जो माल मौजूद है ना उसको खर्च ना करना। तो इंसान क्या करता है? खर्च करने में बुखल करता है। तो हिर्स किस चीज में है? हर वक्त माल और दौलत को समेटने की फिक्र करना। तो शोह जो है उसके मानी क्या है? इसके अंदर बुखल और हिर्स जब दोनों बातें जमा हो जाएं तो उसे शोह कहते हैं। और शहीहुन के मानी बखील और हरीस आदमी के हैं। इसकी जमा यहां पे जैसे अशेहतन है, आई है ना, या अशेहतुन, इसके अलावा शिहाहुन भी आती है, शिहाहुन। तो शिद्दते हिर्स और बुखल का मजमुआ जो है वो शोह कहलाता है। फिर आप आइए आयत नंबर 9 में, लफ्ज आया है सलाकूकुम। अच्छा नहीं, यहां पे मिटा हुआ है मेरे पास कुरान में, तो आयत नंबर है 19। आयत नंबर 19 में लफ्ज है सलाकूकुम, सीन सीन लाम काफ, और सीन लाम काफ के मानी होते हैं पानी के बहने की जगह, पानी के बहने की जगह जो है उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह सिलकातु, ऐसे शख्स को कहते हैं जो जबान दराज हो, जिसकी जबान से अल्फाज बहते चले जाएं, जबान दराज के लिए सिलकातु लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद आप देखिए कि सलाक, ये सब मुबालगा है, ये ना फसीह और बलीग जो बोलता है ना, जो बहुत अच्छी तकरीर करता है, सलाक ये उसके लिए आता है क्योंकि इसके अंदर शद आ गई। और सिलकातु फाहिशा औरत को भी कहते हैं। तो गोया के अच्छे और बुरे दोनों मानी में ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर बात का हमें निचोड़ क्या पता चला कि सलक लफ्ज जो है ये हद से बढ़ना, तेजी करना और चढ़ चढ़ कर बढ़ बढ़ कर बोलना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये मुहावरा है सलाकुकुम बि अलसिनतिन हिदादिन। और अलसिना लाम सीन नून से है और इसके दो मानी हो सकते हैं। एक तो क्या कि जैसे जो जबान है हमारी, ये जो टुकड़ा है गोश का, लिसान है ना, उसकी जमा भी हो सकती है, और एक बोली लैंग्वेज लुगत। तो यहां पे मुराद क्या है? जबाने। और हिदादिन, हिदादिन जो है इसके मानी क्या है? हा दाल दाल से है, हद से बढ़ना। और हा दाल दाल कहते हैं किनारे के लिए भी आता है कि उसकी हद ये है, आड़ के लिए भी आता है, हदीद लोहे को भी कहते हैं। हिदायत का लफ्ज जो है वो तेजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गोया के सलाकुकुम भी तेजी के लिए है और यहां पर जो है वो हिदादिन का लफ्ज जो है ये भी तेजी के लिए जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो आप देख लीजिए कि यहां पर अल्लाह ताला ने जो हिदादिन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो इससे फिर मुराद क्या है कि हद से बढ़ना, तेजी इख्तियार करना। जैसे अब आया है कि जबाने जो हैं वो बहती हैं तुम्हारी हिदादिन की तरह, तो हिदादिन का मानी क्या है कि जबाने तुम्हारी कैंची की तरह चलती हुई आती हैं, और कैंची जैसे कुतरती चली जाती है ना, काटती चली जाती है, तो उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आप इस बात को याद रखिएगा कि सला का हद से बढ़ना, ज्याती करना, और ज्याती करना या हद से बढ़ने के लिए कुरान में 8 लफ्ज आए हैं, और सला का छठा दर्जा है। सला का छठा दर्जा है कि चढ़ चढ़ के आना, हाथ या जबान से दूसरे पर ज्याती करना। और दूसरा लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है हिदात का। तो यहां पर जो है, मैं इसकी क्यों आराम से और अच्छे से बार बार आपको वजाहत कर रही हूँ किताब, ताकि आप इसको जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सके। तो याद होगी ये बात, और औरतों को तो वैसे भी ज्यादा याद आएगी ये बात समझ में। सलाकुकुम बि अलसनातिन हिदादिन अशेहतन अलल खैर। और अब आप देखें कि अशेहतन अलल खैर, अशेहतन का लफ्ज आया है खैर के लिए, हाँ माल के लिए आया है। तो माल जमा तो करते हैं लेकिन खर्च नहीं करते, फिर हरीस बन जाते हैं। फिर आप आगे चलें तो हमें आयत नंबर 20 में लफ्ज मिलता है बादूना का। बादूना जो है, बादाल वो से है, बदुई और देहाती, या फिर बादूना के माने यहाँ पे क्या है, जैसे बदा आबाद होना, और बद्दू के लिए भी आता है। तो बादल वो बस्ती को भी कहते हैं और आबाद होने को भी कहते हैं। तो बादूना यहाँ पे इस्म फाइल है। आराब जो है ऐन रा बा से है, और ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है देहातों के लिए, क्योंकि अराबी या गमार लोग कहाँ रहते हैं, देहातों में रहते हैं। फिर आप आइए तो आयत नंबर 21 पे, 21 में लफ्ज है उस्वातुन। उस्वातुन जो है ये आपको आता है जी, उस्वातुन का रूट है अलिसीन या, इसके मानी होते हैं किसी का इलाज करना, तसल्ली देना, मदद करना, और आसियातुन किसी को अपने बराबर समझना, आसी किसी को अपने बराबर समझना, और फिर इसी से उस्वा है। फिर उस्वा के मानी क्या है, इक्तदा नमूना, वो चीज जिससे तसल्ली हासिल की जा सके। और ये लफ्ज जो है ये अच्छे और बुरे दोनों मानी में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी को तसल्ली जो है वो बुरे किरदार को अपना नमूना बनाकर, अपने लिए नमूना बनाकर होती है, और किसी को तसल्ली जो है वो अच्छे किरदार को अपने लिए नमूना बनाकर होती है। तो उस्वा जो है, जो रोल मॉडल है, वो अच्छा भी किसी के लिए हो सकता है और किसी का उस्वा जो है वो उसके लिए बुरा भी हो सकता है। यानी उस पर डिपेंड करता है कि उसने जो उस्वा इख्तियार किया है या जिस उस्वा के पीछे वो चल रहा है, तो उसने कौन सा उस्वा जो है वो इख्तियार किया है। और आयत नंबर 23 है, इसमें लफ्ज है नाहबाहू, नून हाबा। असल में नून हाबा जो है ये ऊंट का खांसना, बुलंद आवाज से रोना, शदीद गिरिया खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मौत के लिए भी आता है, वक्त के लिए आता है, नजर के लिए भी आता है, जिम्मेदारी जिम्मेदारी के लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप देखें कि जिम्मेदारी या फिर मन्नत मानना, उसके लिए भी ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। जिम्मेदारी के लिए कुरान में हमें दो लफ्ज मिलते हैं, एक है जिम्मा का और दूसरा है नहब का। तो जिम्मा क्या होता है कि दूसरे से अहद को निभाने की जिम्मेदारी है ना, आप किसी की भी कोई जिम्मेदारी ले लेती हैं। और नहब जो है उस नजर को कहते हैं जिसका पूरा करना वाजिब हो, जैसे आदमी ने अपनी जान पर एक चीज वाजिब की है, वो जिम्मेदारी जो इंसान ने खुद अपने ऊपर लाजिम कर ली, खा ये नजर की जिम्मेदारी हो या फिर ये अहद की जिम्मेदारी हो। मतलब ऊंट खांसता है तो क्या करता है, तकलीफ में भी हो रहा, तकलीफ होती है ना इंसान, लेकिन इंसान भी खांसता है, लेकिन ऊंट के खांसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फिर बुलंद आवाज से रोना, तो बुलंद आवाज से इंसान रो रहा है, शदीद गिरिए की कैफियत में है, खांसी में है। ये बुलंद आवाज से तब रोता है जब इंसान मुसीबत परेशानी में होता है, मौत का वक्त हो सकता है ना। या फिर ये कि बहुत जब मुश्किल में होता है, परेशानी में होता है, तो उस वक्त इंसान फिर नजर मान लेता है, मन्नत कर लेता है, तय कर लेता है कोई बात। रो भी रहा है, गिरिया जारी है, खांस रहा है, मर रहा है, लेकिन साथ ही उसने मन्नत मान ली है। मुश्किल में ही मन्नत आमतौर पर हम मानते हैं, खुशी में भी लोग मानते हैं, लेकिन बहरहाल मुश्किल में। खैर आगे चलते हैं, और आगे लफ्ज हमें मिल रहा है, आयत नंबर 26 है, और लफ्ज है फयासीहिम। सयासीहिम, और ये जो लफ्ज है इसका रूट है स्वाद या स्वाद, और सीसातुन की जमा है सयासी, तो सयासी का वाहिद क्या हुआ, सीसातुन। और स्वाद या स्वाद से मुराद क्या है, बाज लोग इससे मुराद किला गढ़ी लेते हैं, किला गढ़ी, हर वो चीज के जिसके जरिए तहफुज हासिल हो सके, तहफुज जो है वो किया जाए, सीसातुन कहलाता है। अच्छा ये जो लफ्ज है ना सीसातुन, ये गाय के सींग को भी कहते हैं। सीसातुन लफ्ज जो है ये गाय के सींग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि गाय के सींग को क्यों कहते हैं, इसलिए कि गाय जो है अपने सींगों के जरिए से अपना तहफ्फुज़ करती है, अपनी हिफाजत करती है। उस पर कोई जब हमला करता है, उसके जब कोई पीछे पड़ता है, तो वो अपने सींगों से जो है ना अपनी हिफाजत करती है। और गोया के ये मुर्ग का जो पंजा होता है ना, उसको भी सीसा कहते हैं। मुर्ग अपने पंजे से क्या करता है, अपनी हिफाजत करता है। तो मुर्ग का पंजा हो या गाय का सींग हो, हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर तरक्की करके, उधार के मानी लेकर या तरक्की करके, ये लफ्ज दिवाई दिफाई हिसार तले गड़ियां उसके लिए इस्तेमाल होने लगा। और इसके बाद जो है लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आयत 27 में, पता उहा, वो तोए हमजा, और इसके मानी होते हैं, मानी क्या होते हैं, वती के किसी को रूंद डालना। वो तोए हमजा, और इसके मानी होते हैं कि रूंद डालना, और जैसे किसी चीज को जो है वो किसी से किसी के साथ मुआफकत करना, रूंदना, उसके लिए ये लफ्ज आता है। जैसे आपने जो है वो इसके लिए भी आएगा कि फतह हासिल कर ली, तुम्हारे कदम वहां तक पहुंच गए, उसके लिए भी आता है। जैसे मर्द औरत के साथ जब निकाह कर लेता है, फिर ताल्लुक कायम करता है, तो वती करना, उसके लिए भी आता है। खैर वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीरा।